नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया पावर टिप्स फॉर पावर यूजर्स, गाय कावासाकी और पेग फिट्ज़पैट्रिक की व्यावहारिक व्यावसायिक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक सोशल मीडिया को केवल प्रचार के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि भरोसा, उपयोगिता और निरंतर संवाद बनाने वाली व्यवस्था के रूप में देखती है। मूलतः वर्ष 2014 में प्रकाशित यह पुस्तक व्यक्तिगत ब्रांड, उत्पाद, व्यवसाय, लेखक या संस्था का डिजिटल उपस्थिति पक्ष मजबूत करने के लिए 100 से अधिक लागू करने योग्य सुझाव देती है। इसका ढांचा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। पहले प्रोफाइल और डिजिटल संपत्तियां, फिर सामग्री, पोस्ट, अनुयायी, टिप्पणियां, ब्लॉग और प्लेटफॉर्म, विशिष्ट कामकाज। कावासाकी और फिट्ज़पैट्रिक का लक्ष्य जटिल सिद्धांत गढ़ना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में अपनाए जा सकने वाले निर्णयों को स्पष्ट करना है। पुस्तक का केंद्रीय आग्रह है कि अच्छी सोशल मीडिया उपस्थिति आकर्षक दिखने, नियमित पोस्ट करने और बिक्री संदेश देने का नाम भर नहीं है। उसे मूल्यवान सामग्री, सही प्रस्तुति, प्रतिक्रिया और अलग अलग माध्यमों के समन्वय से अर्जित करना पड़ता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रोफाइल को विश्वसनीय डिजिटल परिचय में बदलना। पुस्तक का आरंभिक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि सोशल मीडिया पर लोग किसी खाते के बारे में बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। नाम, उपयोगकर्ता नाम, प्रोफाइल चित्र, परिचय और प्रोफाइल कड़ी मिलकर उस शुरुआती निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए लेखक प्रोफाइल को सजावटी पृष्ठ नहीं, बल्कि विश्वसनीयता की आधारभूत संरचना मानते हैं। वे सरल, याद रहने योग्य और पेशेवर पहचान के पक्ष में हैं, विशेषकर ऐसे नाम के जो भविष्य में भी उपयोगी रहे। अस्थायी मजाक, अस्पष्ट उपनाम या संख्याओं से भरी कड़ी किसी व्यक्ति या ब्रांड की खोज योग्यता और गंभीरता घटा सकती है। चित्र के मामले में भी उनका जोर पहचानने योग्य चेहरे, स्पष्ट रोशनी और सक्षम भरोसेमंद भाव पर है। इसका अर्थ कृत्रिम औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संकेत देना है कि खाते के पीछे वास्तविक और जवाबदेह व्यक्ति है। यह सलाह व्यक्तिगत पेशेवरों के साथ छोटे व्यवसायों पर भी लागू होती है। यदि कोई प्रोफाइल यह नहीं बताती कि आप कौन हैं, किसके लिए उपयोगी हैं और आपसे आगे क्या अपेक्षा की जाए, तो उत्कृष्ट सामग्री भी अनजान दर्शक के लिए संदर्भहीन रह सकती है। पुस्तक इसीलिए प्रोफाइल अनुकूलन को सामग्री रणनीति से पहले रखती है। दूसरा, मूल्यवान सोशल मीडिया परीक्षण से सामग्री का चयन। कावासाकी की सामग्री संबंधी कसौटी चार प्रकार के मूल्य पर आधारित है, सूचना, विश्लेषण, सहायता और मनोरंजन। सूचना बताती है कि क्या हुआ, विश्लेषण उसके वर्तमान अर्थ को स्पष्ट करता है, सहायता किसी काम को करने का तरीका देती है और मनोरंजन दृश्य आकर्षण या हल्कापन प्रदान करता है। यह ढांचा इस प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर देता है कि किसी पोस्ट को साझा करने लायक क्यों माना जाए। हर पोस्ट में चारों तत्व होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें दर्शक के लिए इनमें से कम एक ठोस कारण होना चाहिए। इस कसौटी का लाभ यह है कि सामग्री नियोजन केवल उत्पाद समाचारों या लगातार बिक्री प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहता। उदाहरणतः, किसी उद्योग परिवर्तन की कड़ी सूचना हो सकती है, उसके प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या, विश्लेषण, उपयोगी प्रक्रिया सहायता और प्रासंगिक दृश्य सामग्री मनोरंजन का कार्य कर सकती है। पुस्तक की दृष्टि में सामग्री का उद्देश्य खाली जगह भरना नहीं है, वह अनुयायी के समय के बदले उपयोगिता देने का अनुबंध है। इससे साझा किए जाने, टिप्पणियां मिलने और दोबारा लौटने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि दर्शक खाते को अपने हित की सामग्री के स्रोत के रूप में पहचानने लगता है। तीसरा, NPR मॉडल और प्रचार का अधिकार अर्जित करना। पुस्तक में प्रचार और उपयोगिता के तनाव को NPR मॉडल के माध्यम से समझाया गया है। इसका मूल विचार है कि ब्रांड या व्यक्ति को प्रचार करने का अधिकार पहले उपयोगी सामग्री देकर अर्जित करना चाहिए। दर्शक हर समय बिक्री संदेश नहीं चाहते, लेकिन वे कभी कभार के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं यदि खाते ने पहले लगातार जानकारी, सहायता, विश्लेषण या मनोरंजन दिया हो। यह दृष्टिकोण सोशल मीडिया को पारंपरिक एकतरफा विज्ञापन से अलग करता है। वहां संदेश भेजने वाला नियंत्रित करता है कि क्या कहा जाएगा, पर सोशल मीडिया में दर्शक अनदेखा कर सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है या संदेश को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए केवल आत्म प्रशंसा वाला खाता जल्दी थकाऊ बन सकता है। NPR मॉडल अनुपात की कठोर गणना नहीं देता, बल्कि संपादकीय अनुशासन देता है। पोस्ट प्रकाशित करने से पहले प्रश्न होना चाहिए कि यह केवल हमारी जरूरत पूरी कर रही है या पाठक के लिए भी स्वतंत्र मूल्य रखती है। इस सिद्धांत के कारण प्रचार निषिद्ध नहीं होता, बल्कि जब प्रचार आए तो वह पहले से निर्मित भरोसे के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक दिखता है। छोटे उद्यमों, लेखकों और विशेषज्ञों के लिए यह विशेष उपयोगी है। क्योंकि उनके पास बड़े विज्ञापन बजट के स्थान पर विश्वसनीय उपयोगी उपस्थिति बनाने का विकल्प होता है। चौथा, पोस्ट, टिप्पणियों और अनुयायियों को संवाद की प्रणाली मानना। द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया केवल सामग्री बनाने पर नहीं रुकती, बल्कि पोस्ट की प्रस्तुति, टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया और अनुयायी बढ़ाने को एक जुड़े हुए संचालन तंत्र के रूप में रखती है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि अच्छा विचार भी कमजोर रूप में प्रस्तुत होने पर अनदेखा रह सकता है, इसलिए पाठ, दृश्य, कड़ी और संदर्भ को इस तरह व्यवस्थित करना जरूरी है कि स्क्रॉल करते हुए व्यक्ति को विषय और लाभ जल्दी समझ आए। इसी तरह टिप्पणियां केवल आंकड़ा नहीं है, वे रुचि, संदेह, प्रशंसा या असहमति का संकेत देती हैं, जिन पर समय पर और सम्मानजनक उत्तर संबंध को मजबूत कर सकता है। प्रतिक्रिया का अर्थ हर टिप्पणी से सहमत होना नहीं, बल्कि वास्तविक संवाद के लिए उपलब्ध दिखना है। अनुयायी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी इसी सिद्धांत से जुड़ी है। केवल संख्या बढ़ाने के बजाय सही रुचि वाले लोगों तक पहुंचना, उपयोगी सामग्री साझा करना और समुदाय में सक्रिय भागीदारी अधिक स्थायी आधार बनाते हैं। पुस्तक ऐसे व्यवहार को महत्व देती है जिसमें खाता प्रसारण केंद्र के बजाय सामाजिक स्थान जैसा लगे। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, पर ध्यान, भरोसा और जवाबदेही पर आधारित संबंध बनाने की जरूरत बनी रहती है। अंत में, ब्लॉग आयोजनों और अलग प्लेटफॉर्मों का समन्वित उपयोग। पुस्तक की व्यापक उपयोगिता इस बात में है कि वह सोशल मीडिया को किसी एक मंच की चालों तक सीमित नहीं करती। इसमें ब्लॉग के साथ एकीकरण, आयोजनों का सामाजिक प्रसार, ट्विटर चैट, गूगल प्लस हैंगआउट्स ऑन एयर और अलग अलग प्लेटफॉर्मों के अनुकूलन जैसे विषय शामिल हैं। इन उदाहरणों का स्थायी सिद्धांत यह है कि हर माध्यम की भूमिका अलग हो सकती है। ब्लॉग अपेक्षाकृत गहरी और खोजी जा सकने वाली सामग्री का आधार बन सकता है, जबकि सोशल पोस्ट उस सामग्री तक लोगों को पहुंचाने, चर्चा शुरू करने और छोटे उपयोगी अंश साझा करने का माध्यम है। आयोजनों के लिए भी सोशल मीडिया केवल घोषणा पट नहीं है। पहले रुचि बनाना, आयोजन के दौरान सहभागिता दिखाना और बाद में मुख्य सीख या सामग्री साझा करना उसकी उपयोगिता बढ़ा सकता है। मंच, विशिष्ट अनुकूलन का अर्थ हर जगह बिल्कुल एक जैसा संदेश चिपकाना नहीं है। भाषा, दृश्य रूप, दर्शक की अपेक्षा और संवाद की शैली को माध्यम के अनुरूप ढालना पड़ता है। हालांकि पुस्तक के कुछ मंच अब पहले जैसे केंद्रीय नहीं रहे, इसकी मूल सीख प्रासंगिक है। किसी भी नए मंच पर जाने से पहले उसके उपयोगकर्ता व्यवहार को समझना, अपनी मूल सामग्री संपत्तियों से जोड़ना और परिणामों को समग्र रणनीति में देखना अधिक टिकाऊ तरीका है। निष्कर्ष में, द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें सोशल मीडिया पर उपस्थिति बनानी या व्यवस्थित करनी है, पर जो अत्यधिक सैद्धांतिक विपणन पुस्तकों के बजाय स्पष्ट कार्यविधि चाहते हैं। छोटे व्यवसाय मालिक, स्वतंत्र पेशेवर, लेखक, विपणन कर्मी, सामुदायिक प्रबंधक और व्यक्तिगत ब्रांड बनाने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। शुरुआती पाठकों को प्रोफाइल, सामग्री और अनुयायी संबंधी बुनियादी निर्णयों की क्रमबद्ध सूची मिलती है। अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए इसका लाभ किसी अनदेखे गुप्त उपाय से अधिक अपनी मौजूदा आदतों को उपयोगिता, प्रस्तुति और संवाद की कसौटी पर जांचने में है। पुस्तक का यथार्थवादी सीमित पक्ष भी है। इसमें वर्णित कुछ विशिष्ट मंच और सुविधाएं समय के साथ बदल चुकी हैं, इसलिए इसे वर्तमान मंचों के बटन दर बटन निर्देश की तरह पढ़ना उचित नहीं होगा। फिर भी इसकी प्रमुख अवधारणाएं, जैसे मूल्यवान सामग्री, प्रचार का अधिकार अर्जित करना, पहचानने योग्य प्रोफाइल और ब्लॉग सोशल समन्वय, मंचों के परिवर्तन से अधिक टिकाऊ हैं। समान श्रेणी की पुस्तकों से इसका अंतर इसकी संक्षिप्त, क्रियात्मक और संपादकीय दृष्टि में है। यह केवल पहुंच बढ़ाने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि लोग किसी खाते को ध्यान देने, साझा करने और भरोसा करने योग्य क्यों मानेंगे। इसी कारण यह सोशल मीडिया के व्यावहारिक आधारों के लिए उपयोगी संदर्भ बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गाय कवासाकी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।